السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. کنٹینیو کریں گے پیج 61 سے کہ کس طریقے سے گناہ ہمیں مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب ہم کسی بھی گناہ کو ہلکا جانتے ہیں تو بعد میں اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سزا دیتا ہے. تو آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے نافرمانی کی سزا. حکومتی منصب پر براجمان حکمرانوں کے متعلق شراب خوری، فسق و فجور، ظلم کرنے اور قابل حد جرم کے مرتکب ہونے کے متعلق بار بار سنتے رہتے ہیں اور سوچتا ہے انسان کہ ان پر کب حد قائم ہوگی اور حد کون قائم کرے گا. حکمران تو یہ خود ہیں. چنانچہ سلسلہ چلتا رہا، وقت رفتہ رفتہ گزرتا رہا. میں عدم اقامت حد کے بارے میں سوچوں میں گم تھا. اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ قدرتی آفات کی لپیٹ میں آ کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے اور عجیب حالت سے دوچار ہو گئے. ان کے ظلم کا انتقام مال چھن جانے سے ہوا اور حد سے کئی گنا زیادہ سزا پائی. چنانچہ طویل زمانہ پسے دیوار زندہ، یعنی مراد کیا ہے قید کے پیچھے رہنا، ایسی بیڑیوں میں جکڑے رہے اور ایسی ذلت دامنگیر ہوئی کہ حد لگنے سے بھی کئی گنا زیادہ تھی. تمام مظالم کے بعد بعض ان میں سے قتل ہوئے تو اسی سے میں نے سمجھا کہ گناہ پر فوراً سزا نہ ہونا ڈھیل ہے. ہر گناہ کی سزا آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی ملنا ضرور ہے. کیا سمجھ آیا اس پیراگراف سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نافرمانیوں کی سزا ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں مل جاتی ہے اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے سنبھال دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اس لیے بھی پکڑ لیتا ہے کہ وہ مزید گناہوں سے بچ جائے. کیونکہ جب ایک انسان کو پہلی دفعہ پہ پکڑ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ آئندہ کے لیے بچ جاتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جیسے پہلی غلطی پہ ملازم کو اگر آپ پکڑ لیں تو وہ توبہ کر کے چھٹ جائے گا، نہیں میں نے آپ کو واپس کرنے تھے پیسے، میرا چوری کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن اگر وہ پہلی غلطی پر چھوڑ دیا جائے اور آپ کوئی نوٹس نہ لیں تو پھر وہ اگلی غلطی جان کے کرے گا اور اس کو ایسے لگے گا کہ میں تو بچتا ہی رہتا ہوں. تو لہٰذا نہ تو فوراً کسی کی پکڑ کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ یہ برا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلطی کرنے پر فوراً پکڑ کر ان پہ رحم کرتا ہے، یہ لکھ لیں. سوال ہے کیا رحم ہے؟ رحم یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے گناہوں کی لسٹ چھوٹی ہوگی. کیونکہ بظاہر تو کہے گا اوہو، لوگ تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کہیں کہ چونکہ اللہ کو آپ سے پیار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے. جیسے کوئی دوسرا تماشا دیکھ رہا ہوگا نا، تو وہ دیکھے گا بچہ جو کرتا ہے کرے، منہ پہ کچھ رنگ لگا رہا ہے، ہنسیں گے بولیں گے، لیکن ماں آئے گی دیکھے گی بچے نے اگر کوئی ایسی غلط چیز پکڑی فوراً اس کے ہاتھ سے لے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بچہ نقصان بھی لے سکتا ہے اس سے، اور دوسری بات ہے کہ بعد میں اس کا چہرہ صاف کرنا مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بندے کو بعض دفعہ فوری پکڑ کے اس پہ رحم کرتا ہے اور بعض دفعہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. اب اس میں دیکھیں حکمرانوں کی بات ہوئی ہے نا، تو بعض دفعہ کچھ حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے لگتا ہے کہ ظلم کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پکڑا نہیں جا رہا ہوتا. کیوں؟ کہ ان کا دل خراب ہے. اور ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں اپنے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آپ کے لیے پیار اور اس کا رحم ہے. دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تو مجھے پہلی غلطی پہ ہی روک لے، مجھے زیادہ گندا ہونے ہی نہ دے. آپ دیکھیے کہ کپڑا تھوڑا سا گندا اور آپ اس کو فوراً صاف کر لیں، دھو لیں، کوئی داغ لگا تو دھو لیں، تو آپ کافی دن تک اسی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ گندگی لگ جاتی ہے تو پھر وہ گندگی بار بار اس کے اوپر نشان پڑتے رہتے ہیں، تو اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے گا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، مصائب میں ابتلاء کے وقت کا طریقہ. یعنی جب مصیبتیں آتی ہیں اور انسان اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس وقت کیا کرے؟ دیکھیں یہ باتیں پہلے سے سیکھی ہوں گی نا تو یاد رہیں گی. جب مشکل آتی ہے بندے کی، سب سے پہلے مت ماری جاتی ہے. بعض وقت تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں نا گفتہ بے کہ انسان دعا بھی نہیں مانگ سکتا، ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی، کبھی کتاب نہیں ڈھونڈی جا رہی، کبھی کچھ نہیں. اور اس وقت ریئیکٹ کیا کرنا، یہ پڑھنے لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. اس کو آپ پہلے سمجھیے. دیکھیے آپ جتنی دیر مرضی لگائیں ڈرائیونگ سیکھنے میں، थ्योरी पास करें, आप प्रैक्टिसेस करें, लेकिन जिस वक्त आप हाईवे पे चल पड़े, क्या उस वक्त आप कुछ किताब खोल के पढ़ सकते हैं? क्या उस वक्त आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आएगी कि अच्छा मैं जल्दी से अपने आप को ठीक कर लूँ और मैं इन चीज़ों से इधर कर दूँ? नहीं, उस वक्त तो किताब खोलना हलाकत में जाने का ज़रिया बनेगा। तो आइए पढ़ते हैं। मसाइब के ख़त्म होने का वक्त मुकर्रर है, ये लिखिए। देखिए, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में मुबतला है ना इस वक्त, ये जुमला लिखिए, ये अपने वक्त पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, वो वक्त सिर्फ अल्लाह के इल्म में है, तो तकलीफ़ में मुबतला शख्स के लिए इब्तला ख़त्म होने तक सब्र से काम लेना ज़रूरी है। वक्त से पहले परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं और इंसान पर सब्र करना वाजिब है। अगरचे तकलीफ़ और मुसीबत में मुबतला होने की सूरत में दुआ की इजाज़त है, मगर दुआ भी सब्र के साथ फ़ायदेमंद होती है और समरावर होगी, यानी आप दुआ करते रहें, फल बाद में मिलेगा। और दुआ करने वाले के लिए जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं, बल्कि सब्र, तस्लीम और रज़ा के साथ इबादत इताअत इलाही में लग जाए, इन तमाम फसाद के असबाब को तर्क कर दे जिसके सबब से ये मुश्किल आ पड़ी। तकलीफ़ से जल्दी छुटकारे की दरख्वास्त करना मुकाम अबूदियत के मुनाफी है। अला मुकाम अबूदियत अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ामंदी और सब्र है, इसी को लाजिम पकड़ना चाहिए। कसरत दुआ के ज़रिए इल्हाह और जारी करना बहुत बेहतर है। दुआ से इरास करना हराम है और जल्दबाजी से काम लेना तदबीर के ख़िलाफ़ है। इस फ़लसफ़े को खूब समझ ले, इससे तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करना आसान होगा। अब मैं आपको चंद जुमलों की सूरत में लिखाती हूँ, बहुत अहम बात है। नंबर एक, हर मुसीबत के ख़त्म होने का वक्त मुकर्रर है। फर्स्ट थिंग, शोर मचाएं, चीखें चिल्लाएं, रात अपने वक्त पे ही ढलेगी। आपके मुझे डर लग रहा है, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, आप और मैं सूरज को घुमा के जल्दी नहीं ला सकते, पहली चीज़। दूसरी बात, कब ख़त्म होनी है इसका इल्म अल्लाह को है। बात वाज़े, देखिए दो हथकड़ियाँ हैं ये आपके मेरे हाथ में। नंबर एक, मुसीबत अपने वक्त पे ख़त्म होगी, और दूसरी बात है कि ये मुसीबत कब ख़त्म होगी ये अल्लाह को सिर्फ पता है। तो फिर क्या किया जाए? तीसरी बात, तकलीफ़ में जो मुबतला है वो फिर सब्र करे। ठीक है, आपका मेरा काम क्या है? सब्र कीजिए। ठीक है, सब्र वाजिब है। फिर अगली बात, मुसीबत में परेशान होने का फ़ायदा ही कोई नहीं, बल्कि मुसीबत दो चंद होती है। देखिए ना, चोट लग गई तो सब्र करें। बच्चे को चोट भी लगी, फिर ऊपर से रो भी रहा है, फिर तड़प रहा है, तो चोट दर चोट हो गई और हिलने जुलने से हो सकता है खून और भी निकले, तो इंसान सब्र करे। फिर अगली बात यह कि दुआ कर सकते हैं, लेकिन सब्र की शर्त के साथ। कुछ लोग कहते हैं आज दुआ मांगी फ़ौरन कबूल हो जाए, जल्दी से जल्दी, कोई भी इसमें टाइम ना लगे। नहीं, दुआ कीजिए लेकिन वक्त का इंतज़ार कीजिए। फिर अगली बात क्या है कि सब्र और तस्लीम और रज़ा के साथ इबादत और इताअत में लगें। पहली क्या थी? सब्र करना, फिर दुआ करनी है, तीसरी चीज़ है तस्लीम और रज़ा, अल्लाह से राज़ी रहिए। रदी तो बिल्लाही रब्बन, मेरे रब ने मेरे लिए जो सोचा वो ठीक ही होगा ना। कभी माँ तो नहीं बच्चे को तकलीफ़ देती, इंजेक्शन भी लगाती है, उस वक्त बच्चा कहेगा माँ बड़ी ज़ालिम है, लेकिन माँ को पता है कि ये आज इंजेक्शन, बल्कि कल उससे बुखार भी हो जाना इसको, बट इसके बाद इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से बच जाएगा। ठीक है, फिर अगली चीज़ क्या है? इबादत और इताअत में लग जाए। वाबेला करना, रोना धोना, परेशान होना, उसको सुना, उससे पूछ, उससे कर, क्या होगा जी? एंड ऑफ द डे क्या है? आप और थक जाएंगे, आपके सर में दर्द होगा, आपकी भंवें तनी होंगी, बोल बोल के गला खुश्क होगा, अगर रो भी पड़े तो आंखें भी जलेंगी और सारा जिस्म आपका खिंचा होगा, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे मसल्स खिंच गए हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़, फसाद के असबाब को तर्क करें, यानी एक तरफ नेकी करें, इबादत करें, इताअत करें। इबादत और इताअत का फ़र्क भी समझ लें, ये समझना है तो अल्लाह माफ़ करे एक शादी अटेंड करके आ जाए, कई इबादत गुजार वहाँ इताअत इलाही के फंदे गिरा के फिर रहे होते हैं। देखिए, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना इबादत है बिलफर्ज़, तो अल्लाह की हुक्म को मानना उसकी इताअत है। आज कितने लोग हैं नमाज रोज़े नहीं छोड़ते अल्लाह के हुक्म से, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन इताअत नहीं करते। और उस वक़्त किन की इताअत करते हैं? रिश्तेदारों की। और किन की इताअत करते हैं? बच्चों की। और किन की करते हैं? बच्चों के ससुराल की। और आप देखिए, हम सारी दुनिया की इताअत करते हैं लेकिन असल में अंदर में अपने नफ्स की इताअत कर रहे होते हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, बुरा भी लग रहा हो तो फिर भी कहते हैं चलो कुछ नहीं ना, कुछ थोड़ा सा रौनक मिल रही सही। तीसरी चीज़, गुनाह देखिए,
ज़रूरी नहीं होता कि उस गुनाह का ताल्लुक आपकी उस मुसीबत से ही हो, कोई और देख ले, कभी ज़िंदगी में कुछ और गलत काम किया हो, किसी का मामला आपसे बिगड़ा है, तो हो सकता है किसी का आपने बिगाड़ा हो ज़िंदगी में। आज कोई आपका हक मारा है, शायद कल आपने किसी का हक मारा था, उसको ज़हन में रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप वो सबब ढूंढिए जिसकी वजह से ये तकलीफ़ आई। मसलन आप देखिए ना कि पेट में दर्द है, सबब क्या है कि आप जली हुई रोटी खा रहे हैं और स्टिल खा रहे हैं तो रोटी छोड़नी पड़ेगी ना, या ख़राब चीज़ खा रहे हैं। पाँव में बहुत दर्द है, देखिए जूता तो नहीं तंग, कोई ज़्यादा हील वाला जूता तो नहीं पहना। सबब दूर किए बगैर सिर्फ दुआ करना बेकार बात है। ये तो ऐसे कि किसी को घर से स्मेल आ रही है और बैड स्मेल है, बैठ के दुआ करे हाय ये बू दूर हो जाए, हाय ये बदबू दूर हो जाए। नहीं आप उठिए देखिए गंदगी है किस चीज़ की, हो सकता है कोई चूहा मरा हो सकता है कोई गंदगी फेंक गया हो, उसको फेंके तो अपनी ज़िंदगी से फिर ऐसे वक्त में चुन चुन के गुनाहों को निकालें। फिर इसके बाद आप देखिए कि अबूदियत का मुकाम जब आपको मिल जाएगा ना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, उसके बाद तो बस कह लीजिए कि खैर के रास्ते होंगे। कोई कहता है मैं दुआ ही नहीं करती, मैं नहीं करता दुआ, मुझे क्या मिला, तो ये हराम है। याद रखिएगा अल्लाह ने बंदे को बंदा बनाया है, तो यकीनन आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब अगर आप ये 5-6 नुक्ते आप उंगलियों में लिख लें और एक छोटा सा इसका एक कोई बुक मार्क बना लें, कोई रिमाइंडर बना के फ्रिज पे लगा दें, कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा दें, घर के दरवाजे में लगा दें, इधर उधर लिखा होगा ना, जब मुश्किल आएगी उस वक्त याद आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त जब मुश्किल आती है उस वक्त ये सारा भूल जाना है अगर आपके अंदर नहीं उतरेगा। तो इसको हिफ्ज़ कर लीजिए ये 5-6 नुक्ते, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे तकलीफ़ का असर ही ख़त्म होगा। ऐसे ही ना जैसे बच्चे को चोट लगे तो माँ उसको फिर कोई चीज़ दिखाती है, वो देखो चांद, वो देखो कौवा, वो चिड़िया, तो वो असल में उसका दिल बहलाने वाली बात होती है ना, तो उससे इंशाल्लाह ताला फिर दिल खुश हो जाएगा। फिर इसके बाद अब अगला देखिएगा टॉपिक, जलवत पर खलवत का असर। जलवत पर खलवत का असर क्या है इसको समझिएगा, बहुत अहम टॉपिक है। खलवत किसको कहते हैं, तन्हाई को। तो जलवत किसको कहते हैं, लोगों में, यानी कभी हम तन्हा होते हैं कभी लोगों में होते हैं, गैदरिंग्स में होते हैं हम, लोगों के हजूम में होते हैं, इन दोनों का आपस में क्या रब्ता है। खलवत के असरात जलवत पर जाहिर होते हैं, ये लिख लें, यानी जैसी मेरी तन्हाई होगी ना, दूसरों में जाऊंगी तो उसका ज़रूर कुछ असर आएगा। पाकीज़ा तन्हाई दूसरों में आपकी मेरी पाकीज़ा गुफ्तगू का ज़रिया बनेगी, और इसी तरह अल्लाह ताला के कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो खलवत में अल्लाह ताला के अजाब के खौफ, सवाब की उम्मीद या अजमत इलाही की ताज़ीम में अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं। ये मर्दियात है ना, मर्ज़ी की चीज़ें, रज़ा की चीज़ें, ये बहुत अहम जुमला है। क्या पता चला, अकेले में गुनाह करना आसान होता है, ऐसे ही है ना, कोई नहीं देख रहा, दूसरों में तो इज्जत ही बनी हुई है, लोग क्या कहेंगे, शर्म भी आएगी, लेकिन तन्हाई में कुछ नहीं, क्या चीज़ उस वक़्त काम आएगी, नंबर एक अल्लाह के अज़ाब का खौफ, दूसरी बात सवाब की उम्मीद कि अगर इस वक्त नफ्स पे काबू पा लूँगी ना तो सवाब बहुत होगा, तीसरी बात अल्लाह की अजमत की ताज़ीम। कैसे, बस आप देखिए आम इंसान हमारे पास हम वो गुनाह नहीं करेंगे, उसकी शर्म है ना हमें, उसकी अजमत का एहसास है ना, तो फिर क्या अल्लाह की अजमत इतनी भी नहीं है। हदीस से ये बात मिलती है कि जिस बंदे ने तन्हाई में गुनाह किया और लोगों में छोड़ दिया, या कर रहा था अकेले पे गुनाह और दूसरों को देख के छोड़ दिया, तो अल्लाह को उस पर जलाल आता है कि मेरा तुझे एहसास नहीं हुआ लेकिन दूसरे का हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ये चीज़ें आएंगी ना तो फिर मर्ज़ी की चीज़ें कुर्बान होंगी, मगर इस अमल का असर जलवत पर होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, कोई शख्स ऊदे हिंदी, ऊद कहते हैं वो आग जो जलाएं तो खुशबू आए, और हिंदी बड़ी मारूफ खुशबू है, आप लोगों ने इतर में भी देखी होगी, यानी ये ख़ास लकड़ी होती है, जब उसको जलाएं तो बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। आज के दौर में इसके कई मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको जला सकते हैं। तो कोई शख्स ऊदे हिंदी की धुनी दे और खुशबू फैल जाए तो लोग इसको सूंघ लेते हैं और इनको ये मालूम नहीं होता कि ये खुशबू कहाँ से फूट रही है, ऐसी है ना। तो जब आप तन्हाई में कोई अच्छा काम करते हैं ना तो नज़र ना आने वाली खुशबू की तरह आपकी अच्छाई दूसरों में फैल जाती है, इससे ये मुराद है। तरक ख्वाहिशात पर मुजाहदे की बकदर मेहनत बढ़ जाती है, और इस खुशबू में बकदरे, बकदर कमरा जितना एज क्वांटिटी कह लीजिए, इस खुशबू में मुजाहदे की कदर ही कमी बेशी होती है। लज्जातो ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने वालों की तारीफ में लोगों की जुबानें तर और इनकी ताज़ीम में आंखें झुक जाती हैं। जानने वाले और ना मानने वाले भी सभी इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, हत्ता कि लोगों की ज़ुबानों पर यह जिक्र मरने के बाद भी बकदरे मुजाहिदा बाकी रहता है। चुनाचे बास का तस्करा काफ़ी मुद्दत बाकी रहने के बाद भुला दिया जाता है। बास का तस्करा 100 साल तक रहता है, फिर लोग इसको भूल जाते हैं और बास ऐसे अमल करके दुनिया से रुखसत होते हैं कि हमेशा इनकी याद और इनका जिक्र बाकी रहता है। हर वक्त हर ज़माने में लोग इनकी खूबियों का तस्करा करते हैं। जहन में हज़रत इब्राहिम ज़रूर आ रहे होंगे आपके भी। इनके मुकाबिल लोगों से डरने और खलबत में हकूकुल्लाह का एहतराम न करने वाले लोगों की मिसाल बदबू फैलाने वाले की तरह है, और ये बदबू बकदरे गुनाह होगी। कम हो तो कम, ज़्यादा हो तो ज़्यादा। अगर गुनाह कम होंगे तो लोगों की ज़ुबानों पर बुराई भी कम होगी। और बसा औकात इंसान बहुत कुछ करने के बावजूद बवजह इर्तकाबे गुनाह गुमनाम रहता है, ना इसकी तारीफ होती है ना तनकीद। अब देखिए, इसमें से फिर अपने लिए नुक्ते नोट कीजिए। मिसाल समझ आ गई होगी आपको कि अगर कोई तन्हाई में खुशबू फैलाता है तो उसकी खुशबू ज़रूर आती है। इसी तरह जब एक बंदा अपनी ख्वाहिशों को तर्क करने में मेहनत करे, जो लफ्ज़ है ना मुजाहिदा, मुरादे की मेहनत, बहुत मुश्किल है। याद रखिए, कुरान में तो खुशखबरी है, वम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़ाइनल जन्नत ही अल मावा। और सूरत रहमान में क्या आते हैं, वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, दो जन्नतें उसके लिए जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और अपनी ख्वाहिशात को दबाने वाला बन गया। तो क्या पता चला कि अपनी ख्वाहिशों को दबाना है, वो ख्वाहिशें जो गुनाह वाली हैं। और जिसने इस तरह कर लिया, कुछ की तारीफ़ है दुनिया में, कुछ की मौत तक, कुछ की 100 साल, और कुछ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह वजल लिसान असद के फिल आखरीन की सूरत में अल्लाह ताला बाद के दौर तक उनकी तारीफ़ें कायम रखता है। अब आप देखिए, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपके जाने के बाद आपको याद करें, ये अच्छा है, या लोग आपके मुँह पर तारीफ़ करें और आप वहाँ से उठ के जाएँ तो बुराइयाँ शुरू कर दें। तो फिर क्या पता चला, हमारी तन्हाई की नेकियाँ और हमारी तन्हाई के गुनाह, लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत या हमारी बुराई डालते हैं। मेरे भाइयों, गुनाहों पर गौर करो कि अल्लाह के गुनाहों के कितने बुरे असरात होते हैं। हज़रत अबू दरदार रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बहुत प्यारे सहाबी थे अल्लाह के रसूल के, क्या कहते हैं, इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों के अंदर इसके लिए नफ़रत और बुग़्ज़ पैदा करता है, लेकिन इसको खबर नहीं होती। बात समझिएगा, बड़ी बात है। यानी जब कोई बुराई करता है तो उसको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन दिल तो अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह उसके लिए नफ़रत और बुग़्ज़ डाल देते हैं। जो कुछ मैंने लिखा इसको खूब देखो और समझने की भरपूर कोशिश करो, अपनी खलवतों से गाफिल ना हो, सिर्रम व जहरन यानी तन्हाई में और लोगों में हर हालत को दुरुस्त करो, इसलिए कि आमाल पर सवाब व अजाब का मदार नीयतों पर है, खलासे नीयत पर ही अजर मिलता है। क्या पता चला आपको, मुझे आपको मुझे अपनी तन्हाइयों को खूबसूरत करना है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि लोगों के दिलों में मोहब्बत होगी। तो आज से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह लोगों के दिल में भी मेरा प्यार डाल दे, कैसे कि मुझे नेकियों पे जमा दे। इसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही प्यारा है, गुनाह और तौबा। रब देखते हैं इनका क्या है। जो शख्स हमेशा आफियत और सलामती का ख्वाहिश हो, कौन नहीं है ये बताइए, हम में से हर एक आफ़ियत चाहता है। आफ़ियत क्या होता है, सेफ्टी, बीमारियों से, चोरियों से, परेशानियों से, बर्फ़ पे फिसलने से, बीमार हो जाने से, हर चीज़ से आफ़ियत, राइट। और सलामती भी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम सलामत ना रहें या हमारे जिस्म में कोई टूट फूट हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या करें, अगर आप और मैं आफ़ियत और सलामती चाहती हैं तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों से ख़ुद को हर वक्त बचाता रहे, इसलिए कि जो अपने नफ्स को तकवा के मनाफी उमूर में खुला छोड़ता है, जल्द या बदेर इसकी सज़ा ज़रूर पाता है। बसाओकात इस धोखे में होता है कि गुनाह पर बरवक्त सज़ा नहीं मिली, अल्लाह ताला के एहसानात बराबर जारी हैं, तो समझता है कि मेरे गुनाहों से दरगुजर कर दिया गया, और वह मैं यामल सुअं युजब ही के फरमाने इलाही को भूल जाता है। इसका मतलब क्या है, और जो कोई बुरा अमल करेगा तो उसकी जजा पाएगा। और कभी नफ्स ये कहता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करेगा, और गुनाह करवा देता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला माफ़ करता है, लेकिन जिसे चाहता है इसे माफ़ करता है, مغفرت کا مطلب بیان کروں گا، اس کو سمجھو کہ مغفرت اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ جس شخص سے غیر ارادی طور پر غلطی ہو اور دوبارہ کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو، اور غلطی اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد غلطی کا احساس ہو اور اس پر نادم ہو کر دربار الہی میں اسے معاف کرنے کی التجا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی ندامت و پشیمانی اس گناہ کی گندگی کو دھو دیتی ہے. مثلاً کوئی خوبصورت چیز سامنے آ جائے اور طبیعت اس پر غالب آ جائے اور اس کو دیکھے اور لذت حاصل کرے تو گویا یہ مال کے نشے کی طرح ہے. پھر اس کو اس کا احساس ہو اور اس پر شرمندگی ہو تو یہ غلطی و گناہ کے آثار کو دھو ڈالے گی. یہ معنی ہے اس فرمان الہی کا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون. کیا جب ان کو چھو جاتی ہے شیطان کی طرف سے ہلکی سی اکساہٹ، یاد رکھیں شیطان ہمیں بار بار گناہوں پہ مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم پھر اللہ کی نظروں سے گر جائیں، تو کہتے تذکر، ہوش میں آ جاتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے یہ شیطان تھا جو مجھے دکھی کر رہا تھا. فائزہ ہم مبصرون، پھر وہ خوب دیکھنے بھالنے لگتے ہیں. کیا پتہ چلا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کسی پہ کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ شیطان ہے جو اس وقت مجھے بہکا رہا ہے. اور یاد رکھیے شیطان کا تو مقصد ہی کیا ہے کہ آپ کو مجھے ورغلائے. اس کا مقصد حیات، پرپز آف لائف کیا ہے؟ کہ جس جنت سے وہ محروم کر دیا گیا وہ خود بھی اس سے نکل جائے اور ہم سب کو بھی نکلوا دے. اس لیے ہمیشہ اس کے پندوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نفس کبھی یہ جو بات کہتا ہے، کوئی بات نہیں نا، اللہ معاف کر دے گا، پھر اور گناہ کرا دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن جسے چاہتا ہے اسے معاف کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دے. تو مغفرت پھر کیا ہے؟ خلاصہ کر لیجئے، مغفرت اور توبہ جس شخص سے بغیر ارادے کے غلطی ہو، یعنی پہلی چیز لکھیے ارادہ نہیں تھا گناہ کا. آج تو اللہ معاف کرے ہمارے ارادے، کہ ہمارے تو پلان چھپتے ہیں، 6-6 مہینے پہلے سے پلان کیے ہوتے ہیں کہ اس شادی میں ہم نے کیا کیا خرابیاں رکھنی ہیں، ٹائم لیے جاتے ہیں، ان کے لیے ایڈوانس دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ اس کے لیے ڈیٹس چینج کی جاتی ہیں، اویلیبل ہیں کہ نہیں. تو پھر یاد رکھیے یہ گناہ گناہ نہیں جو بندہ جان بوجھ کے کرے اور سوچے بعد میں توبہ کر لوں گا، نہیں، بلا ارادہ، غیر ارادی طور پہ. دوسری شرط، دوبارہ کبھی نہ کروں. ہم کہتے ہیں نہیں، اگلی شادی میں اس سے بھی بڑھ کے کریں گے، اللہ ہمیں ہدایت دے. تیسری بات، ہو گئی غلطی یا گناہ، ایسی ہو گئی، ارادہ نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی، کسی کے لیے ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، تو پھر احساس ہو، شرمندگی ہو اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرے گا. اس کی ندامت و پشیمانی اس گناہ کی گندگی کو دھو ڈالتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے ندم التوبہ، دو لفظوں کی حدیث یاد کر لیں، ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ کا دوسرا نام ہے. یعنی شرمندگی کے بغیر آپ 100 دفعہ بھی پڑھ لینا استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی وظیفہ ہی کر رہے ہیں آپ، کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کا دل نادم اور شرمندہ نہیں ہے. اور گناہ کو بار بار کرنے والا اور اس پر اصرار کرنے والا تو جان بوجھ کر کرنے والا ہے، کھلم کھلا حکم الہی کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، تو معافی بھی بقدر اصرار ہوگی اور گناہ پر سزا ہوگی. جیسے ابن الحلہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شیخ کہتے تھے اس دور میں استاد کو، میرے شیخ نے مجھے ایک عیسائی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی سزا کو تم ضرور دیکھو گے، اگرچہ دیر سے دیکھو، چنانچہ 40 سال کے بعد میں قرآن بھول گیا. اب آپ پریشان ہوں گے، اچھا غیر مسلموں سے بات کرنا گناہ، عیسائی لڑکے سے بات کی اور قرآن بھول گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو دیکھیے وہ گفتگو اچھی نہیں ہوگی نا، وہ دعوت تو نہیں دے رہا ہوگا نا، وہ اس کی کوئی جائز کا میں مدد تو نہیں کر رہا ہوگا. صرف یہ دیکھیے اس دور کے استادوں کا کرائیٹیرین کیا تھا. آج کوئی ہو کے چھوڑیں، اتنے ججمنٹل ہیں، لو اتنی نصیحتیں کرتے ہیں، ہر بات نوٹ کرتے ہیں، اور استاد کی بات 40 سال بعد یاد آ رہی ہے کہ جب قرآن بھول گیا، کہ اچھا یہ وہ میرا گناہ تھا جس پہ استاد نے ٹوکا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یقین کر لیجئے کہ گناہ کرنے کے بعد بدن کی سلامتی سے دھوکہ کھانا سب سے بڑی غلطی ہے، اس کو بھی نوٹ کریں. بعض کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، وہ فلاں اتنا نیک ہے کیوں ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، فلاں کی بیٹی کو طلاق کی ہو گئی، وہ تو بڑے دین کا کام کرتے تھے. تو دیکھیے یہ بہت بڑی غلطی ہے بندے کی کہ میں گناہ کر کے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، تو وہ کمر میں درد کے وہ تو ٹھنڈ لگ گئی، اور وہ ادھر کیا ہوا، وہ تو پاؤں پھسلا. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کس گناہ پہ ٹھنڈ لگی، کس وجہ سے پاؤں پھسلا، ہم ظاہری اسباب پہ مر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا انسان بھول جاتا ہے، इसलिए कि फौरन सज़ा नहीं होती बल्कि सज़ा अपने वक्त पर आती है। सबसे बड़ी सज़ा तो ये है कि गुनाह का एहसास ही ना रहे। इसको लिखिए, याद रखिए कि जब अल्लाह ताला बंदे से नाराज़ होता है ना, तो उसकी रोटी पानी और उसकी ऑक्सीजन नहीं छीनता बल्कि उससे गुनाहों का एहसास छीन लेता है और उसको गलतियों पर अपना दिल ही नहीं मलामत कर रहा होता। चलिए चंद सेकंड सोचें, कोई गलती को गुनाह किया आज मैंने? इस 24 घंटे में मेरे से कोई गुनाह हुआ? मैंने कुछ किया? और क्या मैंने उसको गुनाह समझा? क्या मुझे उस वक़्त एहसास था कि ये गुनाह? सब था, लेकिन हम ढीले और हम भोले बने रहते हैं। हम कहते हैं जैसे दूसरे देख के हमें इंजॉय कर रहे हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी देख लगेंगे, हमें कहेंगे ये कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना खुश है इस वक्त। लेकिन याद रखिए क्या, कि दिलों का मुरझा जाना और नफ्स का बुरी खसलत का आदी होना सबसे बड़ी अकूबत और सज़ा है। आप देखिए, जिस्म का जो हिस्सा सुन्न हो जाता है ना, उस पे इंजेक्शन लगाए दर्द नहीं होता। इसी तरह जब दिल बंजर हो जाते हैं ना, तो इंसान को बुरे से बुरे माहौल में भी डर नहीं लगता। कभी आपने सोचा, जब हम किसी नाफरमानी की महफिल में होते हैं, सिर्फ छत गिर जाए शोर से, धमक से, अल्लाह की पकड़ से, तो हम बचे? कुछ जल्जला आ जाए, साहबा कहते हैं हम गुनाह से ऐसे डरते थे जैसे पहाड़ हम पे गिर जाएगा, और मुनाफिक का हाल क्या कि जैसे नाक पे बैठी मक्खी उसको उड़ा दिया। अगरचे बदन सही सलामत रहे और मकासद भी पूरे होते रहे, यानी बज़ाहर आपको कोई सज़ा ना मिले, लेकिन अगर आप गुनाहों पर बेहिस हो गए ना, तो ये अल्लाह की सज़ा है। बाज़ अहले इबरत का कहना है कि मैंने जायज़ उमूर में अपनी नज़र को खुला छोड़ दिया, फिर इसकी सज़ा का मुंतज़िर रहा, चुनाचे मुझे बिला वजह और इरादा, यानी बग़ैर किसी वजह और बग़ैर इरादे के तवील सफ़र पर जाना पड़ा जिसमें ज़बरदस्त मुशक्क़त से दो चार हुआ। फिर इसके बाद मेरे वो करीबी लोग मुझसे रुख्सत हो गए जिनका वजूद मेरे लिए बायस इज़्ज़त और इफ्तिखार था, और मेरी ऐसी ऐसी अशिया ज़ाया हुई जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। फिर मैंने तौबा करके इसकी तलाफ़ी की तो मेरी हालत दुरुस्त हुई। फिर ख्वाहिशात नफ्स ने सर उठाया और एक मर्द आंखों को गलत इस्तेमाल करने पर मजबूर किया, जिससे मेरे दिल की हयात और इसका नूर और इसकी रिक्कत और नरमी सब ख़त्म हो गई और पहले से ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर तौबा की तरफ रुजू किया और इस्लाह अहवाल की दुरुस्तगी की कोशिश की और इसके असबाब पर गौर किया और इनको दूर किया, तो हालात फिर से सही हो गए। ज़रा सोचिए, क्या इतनी गहरी नज़र हमारी है? यानी ऐसे ही देख लिया ऐसी चीज को जिसको नहीं देखना था, तो क्या हुआ? करीबी लोग दूर हो गए जिनके साथ बहुत खुश था, तवील सफर पड़ गया। उस दौर में तो आप देखिए, सफर किसी को सजा देनी हो ना, तो कहते थे अल्लाह तुझे किसी सफर में डाले। सफर क्या था? निरी मुशक्कत, कभी पैदल कभी घोड़ों में, ना खाना ना पानी ना कोई रास्ते की सहूलियात, आज के सफर नहीं थे। और आप कहते हैं जब तौबा की तो वापस आ गया, फिर दोबारा नफ्स की ख्वाहिशें हुई तो फिर चल पड़ा। ये दुआ मांगी है, ये है मुबसिरून, अल्लाह हमें अपने ऊपर आने वाली हर मुश्किल की वजह सुझा दे। ये क्यों आई है, किसका दिल तोड़ा, किसकी नाफरमानी की, किसको खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया, कब फजर कज़ा की, कब नमाजें डेले हुई, कहाँ मैंने अपने आप को खोल दिया, नहीं खोलना था। याद रखिए, गुनाह वो करे जिसमें सज़ा सहने की ताकत है। मैं अक्सर कभी किसी को सरीहन ऐसे गुनाह में देखूं कि जिसके ऊपर कोई शक ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ है ताकत इसको भुगतने की? फिर जब कमर में दर्द, जब सर में दर्द, जब बच्चे ने आगे से बदतमीजी करनी और जब शौहर ने बदगुमान होना है और जब बहन भाई तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और जब दुनिया में कोई ऐसी आफत आएगी जिसकी तुम्हें वजह नहीं समझ आएगी, तो ये वक्त याद करना। तो गुनाह बड़ी जुर्रत है भाई, बड़ा हौसला है। क्या फिर इसके बाद योगा कर लेंगे? देखिए ना, आप बहुत केयरलेसली खाएं, आप कहते हैं जो खा लो देखेंगे बाद में, आइसक्रीम भी खा ली, केक भी खा लिया, फ्राई चीज़ें भी खा ली, फिर क्या कहते हैं, मन चले और जो होना होगा देखेंगे। अब जो होना होगा देखेंगे नहीं, वो हो जाता है। आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ, हो सकता है शुगर हो जाए, अब क्या करेंगे? नहीं, ये तो सबको होनी है, ये तो मौरूसी है ना, मेरे अब्बा को भी थी, अम्मी को भी थी, बहन भाइयों को भी है, चलो जी हम साफ सुथरे। नहीं, जब एक बंदा अपने हालात पे नज़र रखे, उसको समझ आने लग जाता है कि ये क्या हुआ। फिर आप देखिए, ये कहते हैं जब मैंने तौबा की तो दुरुस्त हुआ, और जब ख्वाहिशों पे फिर मैंने ज़रा सा गलत चीज़ों पे अपने आप को किया तो दिल की ज़िंदगी चली गई, दिल का नूर ही चला गया, दिल की नरमी ख़त्म हो गई। तीन चीज़ें हैं देखिए, दिल की ज़िंदगी ख़त्म क्या है, मुर्दा दिल, दिल ही नहीं खुश, दिल मसोसा हुआ है, खुशी का नाम ही नहीं है जिंदगी में। नूर चला गया, अंधेरे हैं, दिल से नरमी चली गई और पहले से ज्यादा नुकसान हुआ। फिर तौबा की तरफ रुजू किया तो हाल दुरुस्त हो गया। असबाब पे गौर किया, अल्लाह ने हालात फिर ठीक कर दिए। कहते हैं, मैं इन लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ जो ख्वाहिशात नफ्स के समंदर के साहिल पर हैं, कि मेरे भाइयों, इस समंदर की लहरों से खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करो। इसके सुकून से धोखा मत खाओ, इसके अंदर हरगिज़ मत घुसो, साहिल ही में रहो, तकवा के कले से हरगिज़ बाहर ना निकलो। सज़ा एक मरतबा होती है, और ये भी जहन नशीन रखो कि तकवा इख्तियार करने में अगराज, अगराज कहते हैं गरज, यानी वॉन्ट्स लिख लीजिए, आपकी से क्या गरज है, व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम दिस, ये मुराद है। और मर्दियात नफ्स, यानी जिस पे नफ्स खुश हो, और मर्दियात नफ्स का मुकाबला करने में तकलीफ होती है, मगर ज़रबुल मिसल है। क्या बुखार के बाद तंदरुस्ती में इजाफा होता है, तकलीफ के बाद आसानी ज़रूर आती है। अलहमियतु तादिबु सहा, हमारे यहाँ भी ये कहते हैं ना, बीमारी के बाद सेहत अच्छी, क्योंकि वो विटामिन खा लेगा, आराम करेगा, यखनी पिएगा, लोग खिदमत करेंगे, भारी काम नहीं होगा, तो बाद में देखिए ज़्यादा अच्छी सेहत होती है। इसी तरह लिख लें, फाइन नमाल उसरी युसरा, तकलीफ़ के बाद ज़रूर आसानी है, बल्कि अल्लाह तो कहता है माँ साथ है, विद आफ्टर नहीं है, साथ साथ तकलीफ़ों के आसानी आती जाती हैं, और आसानियों के साथ तकलीफ़ें लगी हुई हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रजा के लिए कुत्तों के साथ गंदगी के ढेर में सोना, बड़ी बात है ये, सुनिएगा। अल्लाह आपसे राजी है ना, तो जानवरों के साथ आप गंदगी के ढेर पे सो रहे हैं। ख्वाहिशात नफ्स के खुशनुमा महल्लों में सोने से कई गुना बेहतर है। अल्लाह अकबर, क्या ये बात आज के इंसान और आज के मुसलमान को समझ आती है? आज ये ख्वाहिशें हैं जिन्होंने हमें अल्लाह की नज़रों में जलीलो ख्वार किया हुआ है, और हम कहते हैं बड़े खुश हैं। खुश कोई नहीं है, रात जाती मुसीबतें लगी हुई हैं जान को, और एक खुशी का वक्त अल्लाह क्या दे दे, हम कहते हैं जब तक तू नहीं नाराज़ होगा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कसर निकालते हैं उस वक़्त। तो बंदा ख्वाहिशों को पूरा करके मोहल्लात में सोए, इससे अच्छा क्या है, अल्लाह की रज़ा के साथ दुख सुख में रह ले। अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया की तमाम अगराज़ो मकासद हासिल कर भी लो, लिख लें, नहीं होती। आप सोचते हैं ना कि अल्लाह को नाराज़ किया है तो सब कुछ मिल जाएगा, चलो नहीं मिलता। आप कहते हैं अल्लाह को राज़ी करेंगे तो ये होगा, नहीं मिलता, उतना ही है जितना नसीब में है। ये सब कुछ भी हासिल कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि ऐसी सलामती सलामती नहीं बल्कि हलाकत है, और आफ़ियत आफ़ियत नहीं बल्कि मरज़ है। असल एतबार इंजाम का है, अक्लमंद इंसान तो इंजाम को देखता है। अल्लाह तुम पर रहम करे, आजमाइश इब्तला की सख्त गर्मी को बर्दाश्त करो। ये बेसुबात है, यानी बिल्कुल पायदार नहीं है, नॉट परमानेंट, जल्द ख़त्म होने वाली है। असल तौफीक तो अल्लाह ही की तरफ से है, और वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। कितने देखिए अहम टॉपिक्स हैं, और कितना इंसान इस पे गौर करके अपने दिल को पक्का पाता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा मेरे गुना है, सीधी सी बात है। और याद रखिए, हमारे यहाँ बचपन से एक जुमला हम सुनते आ रहे हैं, गुनाह बेलज़त। कई गुना बेलज़त होते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए करते हैं। मैं तो नहीं कर सकती, क्यों, मुझे रब को नाराज़ नहीं करना, और अब तो मैं तुम सबके साथ बैठ के गुनाह करूँगी, लेकिन जब मैंने इसकी सज़ा भुगतनी है तो मैंने अकेले होना है। फिर हो सकता है तुम में से कोई मेरा सर भी ना दबाए, और उस वक्त मेरे दिल पे फाहा भी ना रखे, मरहम भी ना रखे। तो हमेशा अपने आप को गुनाहों से दूर समझें। यकीन कीजिए, ये चीज़ें हैं, आज तो लगता ही नहीं है कि उम्मत को ये सबक पढ़ा कर गए थे अल्लाह के नबी। बार बार कुरान में और ख़ास रूप मक्की सूरतों में आता है कि वमा साबकुम मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें जो तकलीफ़ आती है तुम्हारे अपने हाथों का किया दर है। डॉक्टर भी यही कहते हैं, जी आपका अपना किया दर है, जी आपने ये वेट खुद गेन किया है, जी आपने अपनी शुगर को खुद ही कंट्रोल से निकाल दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, मर्दियात नफ्स के आगे शिकस्त खाना, ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। क्या जिस चीज़ पे नफ्स अड़ जाए कि मैंने करना ये गुनाह, और बंदा शिकस्त खा जाए, उसका क्या तरीका है कि बचें, यानी नफ्स की गलत चीज़ें उससे अपने आप को कैसे बचाएं, कि हम ना हारें बल्कि हमारा नफ्स हार जाए हमें गुनाह का कहकर। जैसे हज़रत उमर के बारे में आता है कि शैतान उनको देख के रास्ता बदलता था, تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اتنا اسٹرانگ نفس دے دے کہ گناہ کا تصور بھی ہمیں ہلا دے. اگر کسی کا نفس اس کے ساتھ حرام لذت کے حصول کے لیے منازعت کرے, منازعت کیا ہوتا ہے؟ نزا سے, نزا کہتے ہیں جھگڑے کو. نزا آپ دیکھیں نا, کھینچا تانی کا لفظ اس کے لیے آتا ہے. اصل میں سچی بات ہے کہ نفس کئی دفعہ بندے سے کھینچا تانی ہی کر رہا ہوتا ہے. کبھی بچہ ضد میں آیا نا, چھوٹا دودھ پیتا بچہ, ماں کہتی ہے دودھ پیے, وہ نہیں پیتا, اس کو منازعت کہتے ہیں. اب امیجینیشن لائیں, نفس ہے, غلط لذت لینی ہے لینی ہے لینی ہے, اور اس کے انجام میں اور سزا میں غور کرنے اور سوچنے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے, تو اس کی عقل اس کو آواز دیتی ہے, تیرا ناس ہو, تو نفس کے کہنے پر عمل کرتا ہے, ایسا مت کر, اس سے تم ترقی کی راہیں طے کرنے سے رہ جاؤ گے, تمہارا عروج اللہ بند ہو جائے گا, نہ صرف بند ہوگا بلکہ تنزل ہوگا, اور تجھ سے کہا جائے گا اپنی پسند پر برقرار رہ. اگر نفس کا کہنا مان کر عقل کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا تو برابر نزول ہی ہوتا رہے گا. اس کی مثال اس کتے کسی ہوگی کہ اس نے ایک مرتبہ شیر سے کہا, اے جنگل کے بادشاہ میرا نام تبدیل کیجئے, یہ نام برا ہے. شیر نے کہا, تو خیانت کار ہے, یہی نام تیرے لیے مناسب ہے. کتے نے کہا, میں خائن نہیں ہوں. خائن مین کے ڈس آنیسٹ, خیانت کرنے والا, ذرا آزما کر تو دیکھیے. تو شیر نے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کو پکڑا کر کہا, کل تک اس کی حفاظت کرنا تو میں تمہارا نام بدل دوں گا. کتے کو بھوک لگی, وہ بار بار گوشت کی طرف دیکھتا رہا اور صبر کرتا رہا. صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, آخر اس سے رہا نہ گیا. اب امیجینیشن میں لائیں اس نے کیا کیا ہوگا. یہ ہوتی ہے ہمارے نفس کی کیفیت, جب ہم ہار جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں, کہنے لگا آخر میرے نام میں کیا خرابی ہے, میرا نام تو تمام ناموں سے اچھا ہے, یعنی میں اب اپنا نام کتا ہی رکھوں یہی بڑا اچھا ہے. یہ کہا اور گوشت کھا گیا. اس لیے آپ کو پتا معروف ہے محاورہ, نفس کا کتا, لالچ, گریڈ. بالکل اسی طرح کم ہمت لوگوں کا طریقہ ہے, وہ کم سے کم مرتبہ پر قناعت کرتے ہیں, قانع ہوتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی, مرتبہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے ادھر کیا ہے, یہ ٹرنس نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ, اطلاق و مراتن, وہ نہیں, مرتبے سے مراد یہاں رتبہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی عزت مل جائے, ہمیں تھوڑی بڑی جنت مل جائے, اور دنیا میں بھی تھوڑی عزت ہو, لیکن خواہشیں پوری کر لیں. کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کھاؤ پیو, مرنا تو ہے ہی ہے. تو کم مرتبہ وہاں کیا ہوگا, تھوڑی عمر ہی مل جائے, بیماریوں والی مل جائے, ہم نے کھانا ہے اس وقت جو دل چاہ رہا کھانے کو. اور جلدی ملنے والی خواہش کو بعد میں ملنے والی عظیم و شان فضل اور نعمت پر ترجیح دیتے ہیں. اللہ اللہ, خواہش نفس کی آگ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. بسا کا صرف ایک مرتبہ پھسلنا ہلاکت کے کنویں میں گرا سکتا ہے. اور بعض نشانات زخم نہیں ملتے, اور فوت شدہ متاع مکمل حاصل نہیں ہو سکتی, البتہ فتنوں کے اسباب سے ہمیشہ دور رہو, اس لیے کہ فتنوں کے اسباب کے قریب جا کر اس سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, جائیں ایسی جگہ میں جہاں جا کے گناہ کرنے کو دل کرے. سیدھی سی بات ہے, سد ذرائع کہتے ہیں. اور دیکھیں اسلام نے تو کہہ دیا لا تقرب الزنا, اور میں افسوس کے ساتھ کہوں اللہ برکتیں دے مسلمانوں کی خوشیوں میں, کسی بھی جگہ اگر جانے کا یا گزرنے کا اتفاق ہو تو میں یہ سوچتی ہوں کہ خوشی کے موقع پہ ماحول کیا بنا ہوا ہے. کتنے لوگ ذہنوں اور نظروں اور دلوں میں زنا کر لیتے ہوں گے اتنی سجی سمری لڑکیوں کو. اور سب سے بڑا ظلم جو اس وقت ہو رہا ہے نا, کماری ان میرڈ بچیاں اور بوڑھی مائیں برابر ہو گئی ہیں. ہر ایک کہتا ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے ہو. پہلے ماؤں کو اپنی چھوٹی بچیوں کو بنانے کی ہوتی تھی, اور جو بیچ کی جوان ہوتی بچیاں تھیں ان کے اوپر تو مائیں اتنی سخت نظر رکھتی تھیں, کوئی ضرورت نہیں. ماں کے چھوٹے کیے ہوئے کپڑے بچے پہنتے تھے, لڑکیاں پہنتی تھیں. اور آج دیکھیے ماں کم نہیں بیٹی اس سے بڑھ کے. اللہ مجھے آپ کو بچا کر رکھے, تو مجھے آپ کو اپنے اوپر اس چیز کا چیک رکھنا ہے. میں نے ادھر جانا ہی نہیں ہے جس کے بعد گھر آ کے رونا ہے, ہائے میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں, ہائے اس کے پاس تو اتنے اچھے کپڑے, ہائے اس کی تو شادی ہوگی میری تو بھی ہو نہیں رہی, ہائے وہ تو اتنی پیاری لگ رہی تھی میں تو اتنی بری ہوں, میں تو اتنی موٹی ہوں تو اتنی پتلی تھی. یاد رکھیے جتنا آپ چمکتے دمکتے چہروں کے بیچ میں آ جا کر بیٹھیں گے نا, اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنے اوپر بعد میں غصہ آئے گا. تو ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے پھندوں سے بچائے, اور اس میں ہمیں سیلف کنٹرول دے. پوری آج کی جو نشست کا خلاصہ ہے, سیلف کنٹرول, کنٹرول کرو, اپنے آپ کو بچاؤ. خواہشیں تو ڈسے ہوئے کتے والے شخص کی طرح, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو کتا ڈس لے نا तो वो इतना नुकसान नहीं होता उस बंदे को उससे जितना ख्वाहिशों का डसा हुआ बंदा दुनिया में नुकसान करता और कराता है। तो अल्लाह ताला अमल वाला बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।